नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता थारूप अध्याय 18 संन्यास की सिद्धि श्लोक संख्या 5। मेरे पीछे बोलिए, पेज नंबर 523 है। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेवेत। यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणां। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेवेत। यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणां। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेवेत। यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणां। शब्दार्थ बोलिए। यज्ञ यज्ञ, दान दान, तपः तथा तप का, कर्म कर्म, न कभी नहीं, त्याज्यम त्यागने के योग्य, कार्यम करना चाहिए, एवं निश्चय ही तत् उसे, यज्ञ यज्ञ, दानम दान, तपः तप, च भी, एवं निश्चय ही पावनानि शुद्ध करने वाले, मनीषिणां महात्माओं के भी, महात्माओं के लिए भी। अनुवाद मेरे पीछे बोले। यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निस्संदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। यहाँ धागा लगाकर सब लोग प्रार्थना निकालिए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन सनकयम् चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पितरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचरिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। इस श्लोक फिर से निकालिए, इस श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं यज्ञ दान तपह कर्म नत्याज्यम कार्यम एव तद यज्ञोदानम तपस्चैव पावनानी मनीषणाम। पहली पंक्ति में भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ दान और तपस्या ये कर्म कभी छोड़ने नहीं चाहिए बल्कि और करने चाहिए। भगवान के कार्यम एव यानी करने ही चाहिए, मतलब विशेष रूप से भगवान प्रोत्साहन दे रहे हैं, छोड़ने नहीं चाहिए। तो फिर कोई व्यक्ति सोच सकता है कि ठीक है छोड़ना नहीं चाहिए लेकिन करो, भार समझ कर करो, हाँ कि करना पड़ रहा है इसलिए करो, हाँ। तो भगवान कह रहे नहीं, छोड़ने नहीं चाहिए बल्कि और करने चाहिए, मतलब मन लगा के करना चाहिए। यज्ञ दान तपस्या के जो कर्म है इनमें पूरा मन लगाना चाहिए, अपनी बुद्धि हाँ पूरी रुचि लगानी चाहिए, हाँ अपनी पूरी शक्ति लगानी चाहिए। भगवान के कार्यम एव का मतलब यही है कि आप अच्छी प्रकार से उनको करो। ये नहीं है कि किसी तरह से घसीट रहे हैं, भार बड़ा भार आ गया है, यज्ञ करना है, दान करना है, तपस्या करना है, नहीं। कार्यम एव का मतलब है कि भगवान कह रहे उत्साह पूर्वक करो इनको। अब क्यों करो तो दूसरी पंक्ति में उत्तर दे रहे हैं भगवान, क्यों? यज्ञोदानम तपस्या पावनानी मनीषणाम। यज्ञ दान और तपस्या ये मनुष्यों को पवित्र करते हैं, मनुष्यों को हा? अब मनीषी किसे कहते हैं हा? हम चर्चा करेंगे मनीषी किसे कहते हैं क्या हा? तो हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रीला प्रभुपाद की, योगी को चाहिए कि मानव समाज की उन्नति के लिए कर्म करे। मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन तक ऊपर उठाने के लिए अनेक संस्कार पवित्र कर्म हैं। उदाहरणार्थ विवाहोत्सव एक यज्ञ माना जाता है, यह विवाह यज्ञ कहलाता है। क्या एक सन्यासी जिसने अपना पारिवारिक संबंध त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया है विवाह उत्सव को प्रोत्साहन दे? भगवान कहते हैं कि कोई भी यज्ञ जो मानव कल्याण के लिए हो उसका कभी भी परित्याग ना करे। विवाह यज्ञ मानव मन को संयमित करने के लिए है। जिससे आध्यात्मिक प्रगति के लिए वह शांत बन सके। सन्यासी को भी चाहिए किस विवाह यज्ञ की संस्तुति अधिकांश मनुष्यों के लिए करे। सन्यासियों को चाहिए कि स्त्रियों का संग ना करें, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जो व्यक्ति अभी जीवन की निम्न अवस्थाओं में है, अर्थात जो तरुण है, वह विवाह यज्ञ में पत्नी ना स्वीकार करे। सारे यज्ञ परमेश्वर की प्राप्ति के लिए हैं, अतएव निम्नतर अवस्थाओं में यज्ञों का परित्याग नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार दान हृदय की शुद्धि संस्कार के लिए है। यदि दान सुपात्र को दिया जाता है तो उसे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होती है, जैसा कि पहले वर्णन किया जा चुका है। यहाँ प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में अधिक से अधिक जो बात लिखी है वो अपने संबंध में लिखी है। हाँ, इस श्लोक में जो यज्ञ शब्द आया है, इसका प्रभुपाद जी ने एक अर्थ निकाला है, विवाह यज्ञ। विवाह यज्ञ तो इसको नहीं त्यागना चाहिए बल्कि करना चाहिए। और सन्यासी के लिए सामान्य रूप से समझा जाता है कि चूंकि उसने गृहस्थ आश्रम छोड़ा हुआ है तो उसको किसी विवाह में भाग नहीं लेना चाहिए सन्यासी को। लेकिन प्रभुपाद जी जब विदेश में गए तो उनके साथ में कोई अनुयायी नहीं था, तो उनको जो लोग भी मिले, जैसे भी लोग मिले, उनको ही उन्होंने अनुयायी बनाया। और ऐसे लोग मिले थे प्रभुपाद जी को जिनका जीवन बहुत अशुद्ध था, सब प्रकार से जो है वो अवैध संबंध करते थे, यानी व्यभिचार, मांसाहार, जुआ, नशा सब कुछ करते थे, और उनका ये सामान्य जीवन था। तो प्रभुपाद जी ने उनको अपना अनुयायी बनाने के लिए उनके उन आदतों पर नियंत्रण किया। और जैसे कि गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, इस तरह से जो है जो पुरुष और स्त्री हैं वो मिलते रहते थे एक दूसरे से, एक स्त्री को छोड़ा दूसरी स्त्री, दूसरी को छोड़ा तीसरी स्त्री, ऐसी कोई स्त्री है एक पुरुष को छोड़ती दूसरे पुरुष को, दूसरे पुरुष को छोड़ती तीसरे पुरुष को, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के नाम पर वो जो है समाज की सभ्यता में जो है ये सब कार्य कर रहे हैं जो शास्त्र के विरुद्ध व्यभिचार हैं। और प्रभुपाद जी के अलावा और कोई था भी नहीं विदेशों में उनको शिक्षा देने के लिए, उनको मार्गदर्शन देने के लिए। तो प्रभुपाद जी के लिए जरूरी था कि वे विधि पूर्वक उनका विवाह कराएं। तो अब प्रभुपाद एक सन्यासी थे जिन्होंने स्त्री पुत्रों को छोड़ा हुआ है, अब जो है वो ही विवाह करा रहे हैं अपने शिष्यों का। तो एक जो है ना बड़ी विरोधाभास की स्थिति हो गई प्रभुपाद जी के लिए, लेकिन प्रभुपाद ने किया, क्यों? श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि उनको तो ये प्रचार फैलाना था और चैतन्य महाप्रभु की जो भविष्यवाणी है उसको सत्य करना था। उनको चैतन्य महाप्रभु भविष्यवाणी में विश्वास था कि पूरी पृथ्वी में जितने भी नगर और गांव हैं उनके नाम का प्रचार होगा। तो ऐसी स्थिति में प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों के विवाह किए और उन्होंने उनको शिष्य बनाया और स्त्रियों को शिष्य बनाया। तो सन्यासी वो चूंकि अकेले वही थे, गुरु थे, तो उन्होंने विवाह किए। तो इस कारण से कई लोगों ने जो है प्रभुपाद जी के ऊपर दोषारोपण किया कि सन्यासी होकर के और विवाह के कार्यों में क्यों फंस गए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं सन्यासी स्वयं स्त्री का संग नहीं करता है, लेकिन जो जीवन की निम्न अवस्था में है उनके लिए विवाह यज्ञ वो स्वयं संपन्न कराता है और उसमें भाग लेता है, उस विवाह में रुचि लेता है, उत्साह लेता है, ताकि वो विवाहित जीवन में जो है बंधे रहे, उनके शिष्य और शिष्याएं विवाहित जीवन में बंध करके रहें और विवाह के बाहर कोई स्त्री पुरुष से संबंध ना हो। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने इस श्लोक का तात्पर्य लिखा है। अब हम चर्चा करेंगे यज्ञ, दान और तपस्या, इन तीनों की अलग अलग। यज्ञ में जो है कई प्रकार के यज्ञ होते हैं, गीता में भगवान कहते हैं श्रेयान सर्वमयाद यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतपम, जितने प्रकार के यज्ञ हैं उनमें ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमापिते, जितने भी प्रकार के कर्म है सब ज्ञान में समाप्त होते हैं। उसके बाद फिर भगवान क्या कहते हैं, तद्विधि प्रणिपाते हैं परिप्रश्न सेवया, मतलब ज्ञान यज्ञ क्या है, तो भगवान कहते हैं कि जो उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञान न तत्वदर्शिना, कि जो ज्ञानी हैं और तत्वदर्शी हैं उनके पास जाकर के समर्पित हो और प्रणिपाते हैं परिप्रश्न है और प्रश्न करो और सेवा करो, तो वो जो ज्ञान को उपदेश करेंगे वो ज्ञान यज्ञ है। इसका मतलब भगवत गीता श्रवण करना, तो हम लोग भगवत गीता श्रवण करते हैं प्रभुपाद जी के द्वारा, इस समय भी आप जो सुन रहे हैं ये प्रभुपाद जी के द्वारा ही सुन रहे हैं भगवत गीता, तो ये ज्ञान यज्ञ है। श्रीमद् भागवत का श्रवण करना ये ज्ञान यज्ञ है और भगवत गीता को श्रवण करना ये ज्ञान यज्ञ है। तो ये सबसे बड़े यज्ञ हैं। भगवान ने कह दिया सब प्रकार के यज्ञ हैं, सब प्रकार के कर्म है वो ज्ञान में समाप्त होते हैं। तो नहीं ज्ञानी ने सदृशम पवित्रम यह वेदते, ज्ञान के समान पवित्र और कुछ भी नहीं है। तो ज्ञान यज्ञ जो जितने प्रकार के यज्ञ हैं सबका अंत जो है ज्ञान में होता है, तो ज्ञान यज्ञ से बढ़कर के पवित्र और कुछ भी नहीं है। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत भी नारद जी ने श्रवण किया था तो वो ज्ञान यज्ञ था, उस ज्ञान यज्ञ के द्वारा भक्ति देवी का कष्ट दूर हुआ था। कलयुग में भक्ति देवी दुर्बल हो गई थी, ज्ञान और वैराग्य जो उनके पुत्र थे वो बिल्कुल बेहोश हो गए थे कमजोरी के कारण, तो श्रीमद् भागवत श्रवण करने से भक्ति देवी भी जवान हो गई, सुंदर हो गई, प्रसन्न हो गई, और उनके पुत्र जो ज्ञान और वैराग्य है वो भी हृष्ट पुष्ट हो गए श्रीमद् भागवत के श्रवण करने से। तो श्रीमद् भागवत का श्रवण करना ज्ञान यज्ञ है, गीता ज्ञान यज्ञ, श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ, ये ज्ञान यज्ञ है। और फिर यज्ञों में संकीर्तन यज्ञ, कलयुग में बताया गया कि संकीर्तन यज्ञ, यज्ञ संकीर्तन पायर हिजंती ही सुमेधता, जिनकी बुद्धि शुद्ध होगी वो कलयुग में संकीर्तन यज्ञ के द्वारा भगवान की पूजा करेंगे, है ना। तो संकीर्तन यज्ञ ऐसे है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये संकीर्तन यज्ञ है। अब हम पांचवें अध्याय का 29वां श्लोक निकाल रहे हैं, उसको आप देखिए कि यज्ञ दान तपस्या ये सब कर्म क्यों करने चाहिए। पांचवें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, क्योंकि भगवान यज्ञ दान तपस्या के भोक्ता भगवान है, है ना। इस बात को जान करके उसको शांति प्राप्त होती है। यहां पर भगवान कहते हैं मनीषी नाम पावनानी मनीषी नाम, तो मनीषी का मतलब वही है जो व्यक्ति इस बात को जाने। यज्ञ दान और तपस्या के जो कर्म है जब वो करता है तो भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, भगवान भोगे इसका फल, मैं नहीं भोगूं, भगवान भोगता है। और जो व्यक्ति स्वयं भोगना चाहता है यज्ञ का फल, दान का फल, तपस्या का फल, है ना, तो वो पवित्र नहीं होता, है कि नहीं। यहां मनीषी जो शब्द है जो भगवान कह रहे हैं तो उस व्यक्ति के लिए कह रहे हैं जो इस बात को समझे। अच्छा, मनीषी शब्द है, अब आप निकालिए दूसरे अध्याय का 51वां श्लोक है, दूसरे अध्याय का 51वां श्लोक, इसमें मनीषी शब्द का जो है भगवान ने प्रयोग किया है। दूसरे अध्याय का श्लोक संख्या 51 पेज नंबर 95 भगवान कहते हैं कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति नामयम्। अनुवाद है, इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। तो मनीषी का मतलब क्या हुआ? फलम त्यक्त्वा, कर्मजम फलम त्यक्त्वा, कर्म से उत्पन्न फल को त्यागता है वो मनीषी है, जो कर्म के फल को नहीं भोगता है। भगवान के भोग के लिए कर्म करता है, भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है वो मनीषी है ना। तो इसलिए भगवान ने मनीषी शब्द का प्रयोग किया है। जो रजोगुणी व्यक्ति है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए यज्ञ करता है, दान करता है, तपस्या करता है, और जो तमोगुणी व्यक्ति है वो तपस्या करता है दूसरों के विनाश के लिए या अपने नुकसान के लिए करता है, है ना। जो तमोगुणी व्यक्ति है वो दान भी देता है तो गलत व्यक्ति को दान देता है, गलत स्थान में दान देता है, गलत समय पर दान देता है, या जिस व्यक्ति को दान देता है अगर सही व्यक्ति को भी दान देता है तो अपमान करके दान देता है, तो तमोगुणी, तो वो पवित्र नहीं होगा, है कि नहीं। और यज्ञ भी रजोगुणी व्यक्ति यज्ञ करता है तो फल भोगने के लिए यज्ञ करता है या दिखावा करने के लिए यज्ञ करता है, और तमोगुणी व्यक्ति यज्ञ करता है तो मंत्र भी अशुद्ध होता है उसका, उसकी विधि भी अशुद्ध होती है, उसमें जो है दक्षिणा नहीं देता है ब्राह्मणों को, या प्रसाद वितरण नहीं करता है, तो तमोगुणी यज्ञ कहलाता है। तो इस प्रकार के यज्ञ और दान और तपस्या से कभी व्यक्ति पवित्र नहीं होता है। मनीषी का मतलब है सात्विक, सात्विक व्यक्ति सत्वगुण में यज्ञ करता है, सत्वगुण में दान करता है, सत्वगुण में तपस्या करता है, तो वो मनीषी कहलाता है। तो तीसरे अध्याय का नवा श्लोक निकालिए, इसमें यज्ञ के बारे में भगवान क्या कहते हैं हम देखेंगे। तीसरे अध्याय का नवा श्लोक, इसमें भगवान क्या कहते हैं, पेज नंबर 116 है। यज्ञार्थात कर्मोन्नत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्ते मुख्य संगः समाचरण। यज्ञार्थात श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। तो यज्ञ के अलावा जितने भी कर्म है वो सब इस संसार में कर्म बंधन है, बंधनकारी है। इसलिए भगवान कहते हैं कि यज्ञ के लिए तुम कर्म करो, है ना। फिर तीसरे अध्याय का दसवां श्लोक, इससे अगला श्लोक, इसमें भगवान क्या कहते हैं, सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा प्रोवाच प्रजापति अनेन प्रतिविश्य ध्वम एस वस्तुष्ट कामधो। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने और मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। तो यज्ञ, इस प्रकार भगवान का आदेश यज्ञ करने का, मनीषी व्यक्ति वही है जो ये जानता है कि भगवान के आदेश से यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि सृष्टि जब बनी थी तो उसके प्रारंभ में ही ये आदेश मिला था। फिर श्लोक संख्या 14, श्लोक संख्या 14, इसमें भगवान क्या कहते हैं, अन्नाद्वंति भूतानि प्रजन्यादन्न संभवा यज्ञात भवति प्रजन्य यज्ञ कर्म संभवा। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है, है ना। तो यज्ञ से वर्षा होती है। तो इस तरह से जो सृष्टि का चक्र है जो व्यक्ति जानता है, इस प्रकार से जब यज्ञ करता है तो वो पवित्र होता है, है ना ये। और 13वें श्लोक में ही भगवान यज्ञ के बारे में क्या कहते हैं, जो इससे पहले का श्लोक है, श्लोक संख्या 13, भगवान कहते हैं यज्ञ शिष्टासना संतो मुच्छन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते दुखम पापा ये पचन्ति आत्म कारणा। अनुवाद है, भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन यानी प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। श्लोक संख्या 12 भी यज्ञ के बारे में है, इससे पहले वाला श्लोक। भगवान कहते हैं स्थान भोगाने वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तेर दत्ता न प्रदायभ्यो जो भुंगते स्तेने विसाह। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। तो यज्ञ के द्वारा भगवान की पूजा होती है, है? और इससे देवताओं की पूजा अपने आप हो जाती है और देवता लोग अपने आप आपके जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अगर आप नहीं यज्ञ करते हैं तो आप क्या हैं? भगवद गीता के अनुसार क्या हैं? चोर। आप चोर हैं भगवद गीता के अनुसार। तो इस तरह से हमने कुछ यज्ञ के बारे में चर्चा की, अब दान के बारे में हम चर्चा करेंगे। दान जो है सबसे बड़ा दान क्या है? ज्ञान। सबसे बड़ा दान भी जो है ना ज्ञान। तो दान तो कई प्रकार के होते हैं, अन्न दान है ना, स्वर्ण दान, गोदान, कन्यादान और भूदान, कई प्रकार के दान होते हैं, लेकिन उन सब में बढ़कर के दान क्या है? ज्ञान। ज्ञान का दान करना सबसे बड़ा है। जैसे गोपियां, गोपियां कहती हैं कि जो भगवान की कथा का दान करते हैं लोगों के बीच में वही सबसे बड़े दानी हैं। भूरिदा जना गोपियों का श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है, वो कहती हैं तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीदितम कल्मतापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जन। कहती हैं तब कथामृतम, तुम्हारी कथा का जो अमृत है भूवि गृणन्ति, ये जो इस पृथ्वी में देते हैं वर्णन करते हैं भूरिदा जन, वे सबसे ज्यादा दान करने वाले हैं। तो वे ही सबसे बड़े दानी हैं जो कि इस पृथ्वी में आपकी कथा का दान करते हैं, क्योंकि भगवान की जो कथा है, भगवान के जो चरित्र हैं और भगवान का जो संदेश है इस भौतिक संसार का नहीं है, ये आध्यात्मिक जगत से आता है। आध्यात्मिक जगत में जो भगवान की दिव्य लीलाएं हैं, भगवान के दिव्य जो चरित्र हैं, तो उनका ही नमूना है कुछ जो भौतिक जगत में भगवान प्रकट करते हैं, जिनसे बद्ध जो आत्माएं हैं वो बंधन से छूट करके भगवान के धाम में जा सकते हैं। इस भौतिक संसार की कोई चीज आपको बंधन से नहीं छुड़ा सकती, सब बंधनकारी है ना। तो भगवान की कथा का दान ही सबसे बड़ा दान है। और ये जो है हरे कृष्ण महामंत्र का दान, नाम का दान, ये भी सबसे बड़ा दान है, इससे बढ़कर कोई दान नहीं है। और फिर आपने जो धन संपत्ति उसका भी व्यक्ति को दान करना चाहिए। इसमें आप पेज नंबर 336 निकालिए, 336 पेज नंबर में प्रभुपाद ने दान के बारे में कुछ बातें बताई हैं। ये 10वें अध्याय के श्लोक संख्या 4 और 5 के तात्पर्य में पेज नंबर 336 प्रभुपाद जी कहते हैं जहां तक दान का संबंध है मनुष्य को चाहिए कि अपनी आमदनी का 50% किसी शुभ कार्य में लगाए। दान जो है गृहस्थ के लिए दान करना जरूरी है। अगर वो बंधन कर्म बंधन से छूटना चाहता है तो अपने दान का 50% किसी शुभ कार्य में लगाए। और ये शुभ कार्य है क्या? ये है कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य, यानी कृष्ण भावनामृत के प्रचार में 50% अपनी आमदनी लगाए। ऐसा कार्य शुभ ही नहीं अपितु सर्वोत्तम होता है। चूंकि कृष्ण अच्छे हैं इसलिए उनका कार्य भी अच्छा है, अतः दान उसे दिया जाए जो कृष्ण भावनामृत में लगा हो। वेदों के अनुसार ब्राह्मणों को दान दिया जाना चाहिए, ये प्रथा आज भी चालू है। तो वेदों का आदेश यही है कि दान